हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित हैं, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया, इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम गुरुक्रम है जिसका अर्थ है वो जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतएव भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी भाली जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। ओम अज्ञानति निरन्तरश्च ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभिरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, तो हम श्रवण करते आए हैं कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा था कि आप सर्वज्ञ हैं। उनको कहा था कि आप आध्यात्मिक गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और इसी कारण से आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है कि आप भली भांति भगवत तत्व को जानने वाले हैं, तो आप मुझे क्या कीजिए कि आप मुझे विस्तार से बताइए कि ये जो भौतिक जगत है उसका सृजन किस प्रकार से होता है। तो परीक्षित महाराज बहुत अधिक उत्साहित है भगवत तत्व को जानने के लिए। भगवत तत्व को जानने का मतलब ही है हम भगवान का आध्यात्मिक जो शक्ति है, भौतिक शक्ति आदि है, या जीव और उनके बीच में जो संबंध है, उन सबको सही रूप से समझना। तो परीक्षित महाराज केवल उनके इस उत्साह को देखकर शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो प्रश्न है आपने जो पूछा है, इसी प्रकार का प्रश्न नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था और मैं उसी इतिहास को दोहराने जा रहा हूं, उसी इतिहास को मैं फिर से बता रहा हूं। तो नारद ने भी, हाँ नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो नारद ने इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था, लेकिन नारद एक भ्रम में एक प्रकार से जी रहे थे। नारद ब्रह्मा को ही सर्वे सर्वा समझ रहे थे कि आप ही मूल कारण है इस सृष्टि के। तो इस प्रकार से उनकी स्तुतियां करते हुए जा रहे थे नारद, और परम जो सृजन करता है उनको ब्रह्मा समझ रहे थे। हम नारद सोच रहे थे कि सृष्टि के मूल तो ब्रह्मा ही है, उनको भगवान सोच रहे थे, लेकिन उनके कंफ्यूजन को दूर करते हुए हैं हम ब्रह्मा ये चीज बता रहे हैं कि वास्तव में इस सृष्टि के जो सृजन करता है वो कौन है, परम भगवान है। हाँ मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, प्रमुख सृजन करता भगवान है और मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में उनको नारद को बताते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं कि वास्तव में सारी जो चीजें हैं वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं और भगवान के द्वारा ही सृजित की जाती हैं। मुझे तो एक निमित्त बनाया गया है। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, अर्जुन का उदाहरण देते हुए हैं कि भगवान का अवतरण ये जगत में होता है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो वासुदेव कृष्ण ये जगत में अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो ये उनका कार्य ही था, भूख भार कम करना ये उनका एक मिशन था। तो भगवान को उस कार्य को करना ही था, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अर्जुन तैयार नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान उनको प्रेरित करते हैं और उनको कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ और इस यश को तुम प्राप्त करो। केवल क्या करो, मेरे इस आदेश का पालन करो, जीत जाओगे तो ये सुंदर राज्य का उपभोग कर सकते हो। हाँ, और यदि तुम्हें नहीं भी करना है तो ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है, निमित्त मात्र भव सर्वसाशन। हे अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो इस कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार से वास्तव में जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भारत भूमि ते आयल मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, या पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। कि पृथ्वी में जितने ग्राम आदि हैं, नगर हैं, वहां वहां मेरे नाम संकीर्तन आदि का प्रचार होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो वो होना निश्चित है, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से प्रदान की गई है कि जिसके द्वारा हम वो श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत आदि का यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने का, व्यासदेव के द्वारा या शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्णे सदाम भगते धर्म ज्ञानादिभि सह, कि कृष्ण ये जगत से चले जाते हैं। कृष्ण की तुलना सूर्य के समान की गई है कि कृष्ण सूर्य के समान है। तो ये जगत को जब कृष्ण छोड़ते हैं तो ये जगत में क्या होता है, अंधकार। कृष्णे सदाम भगते धर्म ज्ञानादिभि सह नष्ट कलो दृष्टामेश पुरानो अर्को अधुनो उदितः। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वो अर्क के समान है, सूर्य के समान है, जो कलयुग के जो जीव है उनको प्रकाश देने वाला है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का यही प्रयोजन है कि जो इस जगत में कलयुग के अंधकार में जो जीव है अपनी दृष्टि को खो दिया है उनको ये प्रदान करना, दृष्टि प्रदान करना, उनको प्रकाश प्रदान करना। और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जो देते थे कि नित्यम भागवत सेवया, कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भक्ति रूपी महल को बांधने जा रहे हैं और वो महल का जो नींव है, फाउंडेशन क्या है, श्रवण। तो श्रवण श्रीमद् भागवतम का जो व्यक्ति करता है गंभीरता से, नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। जैसे वो श्रवण करने लगता है तो उसी समक्षण भगवान के प्रति जो दृढ़ भक्ति है, नैष्ठिकी भक्ति है, वो उसके हृदय में स्थापित हो जाती है और इस भौतिक जगत के अंधकार से वो मुक्त होने लगता है। परीक्षित महाराज इसके आदर्श उदाहरण है कि परीक्षित महाराज के जीवन में इतनी बड़ी विपदा आई, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, केवल दो चीजों का उन्होंने शरण ग्रहण की। जैसे उनको पता चला कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा उनको शाप दिया गया है और 7 दिन में उनको शरीर त्यागना है, तो उन्होंने कोई और प्रयास नहीं किया, उन्होंने केवल अपने सारे भौतिक आसक्तियों को बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से त्याग दिया और उन्होंने गंगा की शरण ग्रहण की। और दूसरा किसकी शरण ग्रहण की, शुक्रदेव गोस्वामी की। और जब परीक्षित महाराज बैठ गए गंगा के किनारे और हजारों ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मुझे अभी भय नहीं है, मैं इस तक्षक जो सांप है उसके द्वारा भयभीत नहीं हूं, वो मुझे आए और काट के चला जाए मैं उससे भयभीत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपके आश्रय में हूं, आप जैसे भक्तों के शरणागत में हो, तो आप क्या करो, गायतः विष्णु गाथा कि हे शुक्रदेव गोस्वामी, मैंने गंगा जो भगवान को प्रिय है उनकी शरण ग्रहण की है और आप जैसे महान भक्त का आश्रय मैंने लिया है, तो आप क्या करो, इस कलयुग की जो असली दवाई है, मेडिसिन है, उसको आप दान करो। गायतः कृष्ण गाथा, अब कृष्ण की जो दिव्य कार्यकलाप है उनका वर्णन करते जाओ। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम हर एक भक्ति भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कृष्ण का वाणी अवतार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कि ये जो कृष्ण के तुल्य का मतलब ये है कि कृष्ण के समान ही है ये जो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम को वास्तव में भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख ग्रंथ है। भागवत धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है वो श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होती है, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतना परिपूर्ण है जिस प्रकार से कृष्ण परिपूर्ण है। तो इसलिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का ब्यूटी क्या है, श्रीमद् भागवतम की सुंदरता क्या है, कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को फॉलो करता है, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है, उसको समझने का प्रयास करता है, श्रीमद् भागवतम उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम के अलावा किसी और चीज को प्रदान नहीं करता। ये सौंदर्य है श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम क्या देता है, केवल कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है या अनन्य प्रेम है वो प्रदान करता है। और इसलिए कलयुग में कृष्ण अपने 4 रूपों में प्रकट होते हैं हमेशा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भागवत तुलसी गंगाया भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारि सने, कि 4 चीजों में 4 चीजें डायरेक्ट कृष्ण है। वो 4 चीजें क्या है, चैतन्य भागवत वर्णन करता है, पहला है भागवत श्रीमद् भागवतम, और दूसरी है तुलसी महारानी, तीसरी है गंगा, और चौथी चीज क्या है, भगवान की शुद्ध भक्त जो है भक्तजन। ये 4 चीजें चतुर्था विग्रह कृष्ण यही 40 सन, ये कृष्ण के 4 विग्रह हैं, कृष्ण के 4 डेटीज फॉर्म हैं। बाकी जब कृष्ण के जो विग्रह हैं वो ये जगत में आते हैं, विग्रह की स्थापना करनी होती है, उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, शुद्ध भक्त उस विग्रह, जब तक शुद्ध भक्त भगवान का आह्वान नहीं करता उस विग्रह में, तब तक वो विग्रह पूजनीय नहीं कहलाता, वो मूर्ति है, वो विग्रह नहीं है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान उस विग्रह में
अपने आप को प्रकट करते हैं केवल उस प्रेमी भक्त के आदेशों के अनुसार। और फिर वो जो मूर्ति है या विग्रह है वो पूजनीय होता है। लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चतुर्था विग्रह, ये चार जो विग्रह है कृष्ण के, इनको कोई प्राण प्रतिष्ठा आदि की आवश्यकता नहीं है। इनकी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट पूजा कर सकते हो और वही लाभ अभी चारों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इन चारों में वही सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कृष्ण को प्रदान करने का सामर्थ्य इन चार चीजों में है। हाँ, तो भागवत प्रमुख है। भागवत तुलसी गंगाया भक्तजनी, श्रीमद् भागवतम है जिसको किसी प्राण प्रतिष्ठा आदि की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज है तुलसी महारानी, और तीसरी चीज आचार्यगण कहते हैं गंगा है, और चौथी है भक्तगण। तो भगवान कि ये चार प्रकाश विग्रह है, भगवान इन चार चीजों से अभिन्न है। इसलिए हम गुरुवास्तकम में गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि के समान ही है जो भगवान के प्रतिनिधि या गुरु हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का ये ब्यूटी है कि ये श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है उस व्यक्ति को, उस फॉलोअर को भगवत प्रेम के अलावा कोई और चीज प्रदान नहीं करता। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही हम व्यासदेव वर्णन करते हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, कि धर्म जो कैतव धर्म है, कपट पूर्ण जो धर्म है, उसको श्रीमद् भागवत बाहर फेंक देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कैतव धर्म है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत सारे ग्रंथों का, वैदिक जो शास्त्र है उन सब का सार है। इसलिए व्यासदेव ने शुरुआत में ही कहा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य समितम, कि श्रीमद् भागवत एक पका हुआ एक फल है। और इस ये किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है? शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, शुक मुखादमृत, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत हमें प्राप्त होता है। और शुकदेव गोस्वामी कौन है? शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के क्या है? तोता है, इटरनल तोता है, जो श्रीमती राधा रानी के हमेशा लेफ्ट लेफ्ट जो हाथ है उसके ऊपर बैठते हैं और सदैव कृष्ण का गुणगान आदि को सुनते हैं, और सदैव क्या करते हैं? कृष्ण गुणगान करते हैं। इसलिए वर्णन आता है कि वृंदावन की जो गोपिकास है वो उनके घरों में जो भी पैरट्स आदि है उनको क्या सुनाती है? उठते या सोते समय गोविंद दामो धरमाधवेती, हमेशा भगवान का गुण रूप नाम लीला आदि का वो सब गोपिकाएं वर्णन करती हैं। और उसी में से ये जो शुक हैं, जो श्रीमती राधा रानी के तोता हैं, वो कृष्ण नाम रूप गुण लीला के भंडार है, स्टोर हाउस है। भक्त का मतलब ही है वो क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का वो स्टोर हाउस है, भंडार है। तो शुकदेव गोस्वामी उनमें से प्रमुख हैं। ऐसे शुकदेव गोस्वामी जब भगवान ने इस जगत में लीलाएं अपनी प्रकट की द्वापर युग में, तो द्वापर युग के अंत में भगवान ने जो धाम को छोड़ा, सुधाम उपगते, अपने धाम में जब चले गए तो भगवान ने अपने इस प्रतिनिधि को पीछे छोड़ा था, ये शुक को पीछे छोड़ा था। तो ये शुक तोता जब पीछे रह गया राधा कृष्ण के बिना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, उनके प्राण तो श्रीमती राधिका और कृष्ण है, जब उनको पीछे छोड़ा गया तो वो भटक रहे थे और वो सोच रहे थे कि मेरा जीवन कैसे उनके बिना रह सकता हूं मैं। और उनको वास्तव में भगवान ने छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? श्रीमद् भागवतम को प्रदान करने के लिए छोड़ा था। क्योंकि तत्वविद है जो शुकदेव गोस्वामी है। तो फिर ये जो शुकदेव गोस्वामी है या शुक है, तोता है, वो जब भ्रमण कर ही रहे थे और किस चीज के लिए, क्या चीज ढूंढ रहे थे अपने भ्रमण में? कृष्ण रसायन को ढूंढ रहे थे, कृष्ण रसायन है, क्या है? कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, गुण लीला का वर्णन ये कृष्ण रसायन है। हाँ, और ये कृष्ण रसायन किसमें भरा पड़ा है, कौन सी बोतल में है? श्रीमद् भागवतम में है। तो इस प्रकार से जब इनको छोड़ा तो ये कृष्ण रसायन को ढूंढ रहे थे, और उसी समय हाँ जो शिवजी है, क्योंकि शिवजी का सबसे अधिक अनुराग श्रीमद् भागवतम के प्रति है, इसलिए उनको वैष्णवानाम यथा शंभु कहा जाता है, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनका सर्वाधिक अनुराग इसमें है। और ऐसे शिवजी सदैव एकाम्रवन का मतलब एक आम का पेड़, बहुत बड़ा पेड़, बहुत विशाल, कई योजन इतना बड़ा, उसके नीचे शिवजी सदैव बैठकर अपने जो भार्या है पार्वती है उनको सदा क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं। इतना ही नहीं, नारद सनत कुमार आदि जो चार कुमार हैं, महान ऋषिगण हैं, वो आते हैं और इनके द्वारा श्रीमद् भागवतम आदि को सुनते हैं। तो इस प्रकार से जब एकाम्रवन जिसको भुवनेश्वर कहा जाता है, भुवनेश्वर का शास्त्रीय नाम एकाम्रवन है, तो जब शुकदेव गोस्वामी या शुक ये जो तोता है ये भ्रमण कर ही रहा था कि कहां मुझे वो दिव्य रसायन मिलेगा, क्योंकि इगरनेस उनके अंदर क्या था? लवलता, उसको पान करने के लिए, सुनने के लिए। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी या शुक जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा ये जो शिव जी है कृष्ण कथा का गुणगान कर रहे हैं, और ये कृष्ण कथा किनके साथ आस्वादनीय हो जाती है? आस्वादे रसी का सहा, जो भगवान के प्रति अनुराग रखते हैं ऐसे भक्तों के मुख कमल से हम जब भगवत कथा को सुनते हैं तो उसका महान प्रभाव हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो शिव जी जब इनको सुना ही रहे थे पार्वती को, तो शुकदेव गोस्वामी वहां नजदीक आकर एक वृक्ष के ऊपर बैठते हैं और वो बहुत अटेंटिवली श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। श्रुणवता श्रद्धया नित्यम, कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवत कथा को सुनता है नित्यम, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कालेन न अति दीर्घे न भगवान विशते रुधि, समय नहीं लगता, न अति दीर्घे न लंबा समय नहीं लगेगा, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में निवास करने लगेंगे केवल श्रवण करने मात्र से। तो इस प्रकार से जब ये जो शुक है तोता है वृक्ष के ऊपर बैठ के सुन रहा था, और केवल वो वहां शिवजी पार्वती को सुना रहे थे, तो पार्वती श्रवण कर रहे थे, बीच बीच में हुंकार आते दे रहे थे, हाँ मैं अटेंटिव हूँ, हम भी कभी कभी क्लास में थोड़ा अटेंटिव हो जाते हैं, दिखाते हैं मोस्ट अटेंटिव डिवोटी। तो फिर जब देखा कि उनको नींद आ गई, स्वाभाविक है सबके साथ होता है, तो फिर शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल श्रवण कर रहे थे अटेंटिवली, और शुकदेव ये जो तोता है वो ऊपर से हुंकार दे रहा है, हाँ बोलिए आगे बढ़िए, तो ये बोलते जा रहे शुकदेव गोस्वामी शिव जी जिनका अनुराग कृष्ण कथा में, देखा ये तो सो रही है क्लास में खराटे ले रही है, लेकिन कौन है जो इतना हुंकार आगे दे रहा है? तो उनको कौन दिखाई दिए? शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी मीन्स शुक तोता, और फिर उन्होंने देखा अरे ये सुन रहा है भागवतम बहुत सीक्रेट है, तो ये शिवजी उनके पीछे भागने लगे अपना त्रिशूल लेकर। वैसे वैष्णव को खुश होना चाहिए कोई तो श्रोता है क्लास में, एक ही श्रोता था पार्वती थी और दूसरे थे वृक्ष के ऊपर शुक तोता, तो उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, और वही दूसरी जगह सेम कृष्ण कथा हो रही थी बद्रिक आश्रम में, शम्याप्रास जो स्थान है वहां व्यासदेव अपने पत्नी को सुना रहे थे कृष्ण कथा। तो ये आइडियल पति पत्नी का लक्षण है, क्योंकि जब सती का विवाह हुआ शिवजी के साथ तो शिवजी बाकी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वो सदैव वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ऐसी पत्नी मिली है कि जो हमेशा तैयार रहती है श्रवण करने के लिए, सुनते जाते हैं, आगे बोलते जाते हैं। अब वो कभी कंप्लेंट नहीं करते पार्वती कि बहुत दिन हो गए, फेस्टिवल दिवाली आ गए, गहने नहीं है, साड़ियां नहीं है, क्लास बंद करो। लेकिन एक बार उन्होंने कंप्लेंट किया था, हाँ जब बारिश के दिन आए इनके पास तो घर भी नहीं होता, क्योंकि शिव जी हमेशा सोचते हैं, पुराणों में उनका वर्णन आता है, तो शिव जी सोचते कि ये सब चीजें रखते हैं तो मेंटेन करना पड़ता है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो वो वृक्ष का आश्रय लेते हैं। अब जब बारिश के दिन आए तो सती ने कंप्लेंट किया, ठीक है मैं सहन करती हूँ, गर्मी सहन करती हूँ, सर्दी सहन करती हूँ, लेकिन अभी बारिश को सहा नहीं जा सकता। आप कम से कम बारिश के दिनों में एक कुटिया तो बना लो जिसमें हम कृष्ण कथा करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से अपने पत्नी को उठाया और बादलों के ऊपर चले गए। ऊपर जाकर अपना जो कृष्ण कथा है जिसको अखंडित उत्सव कहा गया है, कृष्ण कथा क्या है, फेस्टिवल है जिसका खंड नहीं कर सकते, खंड नहीं होता। और वैकुंठ का मतलब है अखंडित उत्सव, वैकुंठ का मतलब है कि जहां बिना किसी खंडन के रुकावट के उत्सव चलता रहता है। और आज से उत्सव क्या है, भगवान जो नाम गुण रूप लीला आदि है उनका वर्णन। तो शुकदेव ये जो शिव जी है वो ऊपर जाकर कंटिन्यू कीर्तनीय सदा है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उनका एक नाम जीम केतु है, इसके कारण एक नाम पड़ा उनका जीम केतु शिव जी का, कि जो बादलों के ऊपर जाकर निवास करते हैं बारिश से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन कृष्ण कथा का वो खंडन नहीं करते, रोकते नहीं है। तो ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी जो तोता है, यहाँ व्यासदेव जब ये कृष्ण कथा कर रहे थे तो उनकी पत्नी आवासी क्या कहते हैं उसको, जमाई लेते हैं, थक गए हैं, क्लास हो रहा है और लंबा क्लास होता है तो हम सब भी थक जाते हैं, ठीक है एक लिमिटेड होता है तो ठीक है, लेकिन बाद में आलस होता है, जमाई देने लगते हैं। फिर वक्ता को ध्यान देना चाहिए, लक्ष्मण से श्रोता के क्लास को बंद कर देना चाहिए। तो फिर व्यासदेव तो कंटिन्यू बोलते जा रहे बोलते जा रहे, उनकी पत्नी बीच बीच में जमाई देते जा रही। अभी ये दौड़ते शुक तोता उड़ते आया, इन्होंने क्या किया, उनके मुख में एंटर किया, व्यासदेव की पत्नी के मुख में, और शिव जी दौड़ के आ गए। उन्होंने कहा, उन्होंने उनको शांत किया कि उचित नहीं है, आप किसी भक्त के पीछे लगे हो त्रिशूल लेकर, वैसे किसी का अनुराग कृष्ण कथा सुनने के लिए है नहीं, उसमें भी एक विवेक व्यक्ति सुन ही रहा था। तो शिव जी मान जाते और चले जाते वापस, और विष्णुदेव गोस्वामी योग्य पर्सनालिटी है श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास देवराज कहते हैं कि शिवजी ने अपने पत्नी पार्वती से कहा, अहम वेति शुको वेति व्यास वेति न वेति वह, कि वास्तव में इस भगवत तत्व को तो दो ही लोग एक प्रकार से जानते हैं सही रूप से। शिवजी ने कहा अहम वेति, या तो मैं जानता हूं, शुको वेति या तो कौन जानते हैं, शुकदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासो वेति न वेति वा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि व्यास जानते हैं या नहीं जानते हैं। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न चटिकया, तो जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात कृष्ण है, और भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, या मेरा भक्त मुझे जान सकता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को कोई व्यक्ति अपने संस्कृत स्कॉलरशिप के द्वारा या अपने बहुत मेधावी बुद्धि के द्वारा या नाना प्रकार के टीकाओं का अध्ययन या आश्रय लेकर श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं सकता। भागवत भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय किए बिना श्रीमद् भागवतम के दिए रहस्यों को समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण से शुकदेव गोस्वामी हम श्रीमद् भागवतम के असली वक्ता हैं और प्रमुख स्पीकर हैं एक प्रकार से, और इस श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए या समझने के लिए एक ही योग्यता है कि हमें भक्त के द्वारा समझा जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने अपना सर्वाधिक समय 11 साल में किसी चीज के लिए दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम को सबसे अधिक समय अपना दिया है प्रभुपाद ने, ट्रांसलेट करने में या उसका प्रचार आदि करने में श्रीमद् भागवतम को सर्वाधिक समय श्रील प्रभुपाद ने दिया है और ये समझाया है। बल्कि उन्होंने अमेरिका जाने से पहले श्रीमद् भागवतम के पहले संग को 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया और वही चीज अपने साथ ले गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा एक भक्त प्रकट होगा, मोर सेनापति भक्त जायते तथा है, संकीर्तन खड़ग, मेरा जो सेनापति भक्त है वो अपने हाथ में एक तलवार लेके जाएगा और वो तलवार क्या है, श्रीमद् भागवतम और नाम संकीर्तन। संकीर्तन खड़ग लैया हाते, हाथ में संकीर्तन रूपी तलवार लेके वो भक्त जाएगा। चली पापी छाड़ी दूर देशे जाए, यदि पापी व्यक्ति इस भारत को छोड़कर दूर दूर देशों में भी चले जाएंगे लेकिन मेरा वहां भक्त पहुंचेगा और उसके हाथ में तलवार होगी, संकीर्तन रूपी तलवार, और वो तलवार नाम संकीर्तन है। और प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या बोला है, संकीर्तन। तो इस तलवार को लेके जाएगा और वो क्या करेगा, उनके हृदय में जो आसक्ति है भौतिक भोग आदि की जो लालसा है उसको काटी में फैला काट के फेंक देगा। तो इस प्रकार से भागवत एक लॉक है, लॉक हुआ है, उसकी जो की है चाबी है वो भगवान के शुद्ध भक्त के पास है, हृदय में है, तो उनका हम आश्रय लेते हैं तभी वास्तव में श्रीमद् भागवतम को हम समझ पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए महान महान आचार्यों का जीवन हम यदि देखते हैं तो उनका अनुराग श्रीमद् भागवतम के लिए था और उन्होंने आगे वही शिक्षा प्रदान की है। तो हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् हम श्रील प्रभुपाद के आश्रय में हैं और श्रीमद् जो श्रील प्रभुपाद हैं वो वास्तव में चलते बोलते भागवत है और उन्होंने श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए उत्साहित होना चाहिए और उसका अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम कलयुग में टॉर्च लाइट है, उसका हम आश्रय लेंगे, सदैव श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे सुनेंगे तो तुरंत सत्व गुण में आते हैं। श्रीमद् भागवतम को रेगुलर आप पढ़ते हैं तो उसका एक प्रभाव को हम देख सकते हैं, तुरंत ही हम सत्व गुण को विकसित करते हैं बिना किसी प्रयास के। ये श्रीमद् भागवतम का एक प्रमुख लक्षण है, श्रीमद् भागवतम के संग का। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के।